युग परिवर्तन की वेला में करें इन पंचशीलों का पालन। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह है असाधारण समय। देवियों, भाइयों,
इस समय यह युग के परिवर्तन की वेला है। आपको तो दिखाई नहीं पड़ता, पर मैं आपसे कहता हूँ और मुझे कहना चाहिए कि आप जिस समय में पैदा हुए हैं यह साधारण समय नहीं है, असाधारण समय है। इस समय में युग तेजी के साथ बदल रहा है। आपने देखा नहीं कि किस प्रकार से विश्व की समस्याओं में हेरफेर और परिवर्तन होते हुए चले जा रहे हैं? विज्ञान की प्रगति को क्या आप देख नहीं रहे हैं? ऐसी ऐसी चीजें बनती हुई चली जा रही हैं। एक्स किरणें, एटम बम जैसी चीजें पुरानी हो गई, दकियानुसी हो गई हैं।
अब लेजर किरणें, मृत्यु किरणें आ गई हैं।
जिस तरह से एक्स किरणें फेंक दी जाती हैं, उसी तरह से अगर ये किरणें फेंक दी जाएं तो न गैस फेंकने की जरूरत है, न कुछ फेंकने की जरूरत है। सारे के सारे इलाके में जो मनुष्य जहां हैं, वहीं के वहीं बैठे रह जाएंगे।
उठे हुए हैं तो उठे रह जाएंगे। चलने फिरने के लिए कोई मौका नहीं मिलेगा।
ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हथियार तैयार हो रहे हैं कि अगर दुनिया का सफाया करना हो तो बहुत जल्दी सफाया हो सकता है। विनाश की दिशा में विज्ञान के बढ़ते हुए चरण इस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं कि अगर चाहे तो एक खराब दिमाग का मनुष्य सारी दुनिया का, इस सुंदर भूमंडल का, जिसको बनाने में लाखों वर्ष तक मनुष्य को श्रम करना पड़ा, सफाया कर सकता है। आज का वक्त ऐसा ही है
मित्रों,
आज का वक्त ऐसा है कि जनसंख्या चक्रवृद्धि दर से बढ़ रही है। यदि यह इसी क्रम से चक्रवृद्धि दर पर बनी रही तो आप यह ख्याल रखना कि 100 वर्ष के भीतर जमीन पर पैर रखना मुश्किल हो जाएगा, कुओं में पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा, जमीन में अनाज पैदा करना मुश्किल हो जाएगा, स्कूलों में खड़े होने के लिए जगह मिलनी मुश्किल हो जाएगी।
चक्रवृद्धि ब्याज को तो आप समझते नहीं हैं। एक व्यक्ति ने मुझे चक्रवृद्धि ब्याज के संबंध में हिसाब लगाकर बताया कि अगर एक बच्चे के नाम पर आज 50 वर्ष तक के लिए 1000 रुपया जमा कर दे तो उसको 49 वर्ष बाद 1,32,000 रुपया मिल जाएगा।
यह कैसे हो सकता है?
मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने देखा कि चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से 10% जो आजकल ब्याज मिलता है वह एक महीने के बच्चे के नाम जमा कर दिया जाए और जब वह 49 वर्ष का हो जाए तो 1,32,000 रुपया निकाल सकता है। यह हिसाब बिल्कुल सही है।
इसमें फर्क नहीं पड़ता। चक्रवृद्धि ब्याज जिस हिसाब से बहुत तेजी के साथ घूमता है उसी तेजी के साथ बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसको अगर कम न किया गया, रोका न गया, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 100 वर्ष के बाद इस जमीन पर न अनाज बचेगा, न रोटी बचेगी और न कुओं में पानी बचेगा।
तब आदमी किसी को मृत्यु किरण से मारे चाहे न मारे, किंतु उस वजह से जरूर मर जाएगा। घटिया कौम लाती है विनाश। साथियों,
आप ऐसे समय में पैदा हुए हैं जिसमें विनाश की संभावनाएं तेजी के साथ मुंह फाड़ कर खड़ी हैं। आदमी जितना घटिया होता हुआ चला जा रहा है वह इतना घटिया पहले कभी नहीं हुआ था। दुनिया के पर्दे पर इतिहास यह बताता है कि मनुष्य इतना घटिया कभी नहीं हुआ। आदमी समझदारी के हिसाब से बढ़ रहा है।
विद्या उसके पास ज्यादा आ रही है, समझदारी ज्यादा आ रही है,
पैसा ज्यादा आ रहा है, अच्छे मकान ज्यादा आ रहे हैं, सब चीजें ज्यादा आ रही हैं, पर ईमान के हिसाब से और दृष्टिकोण के हिसाब से आदमी इतना कमजोर, इतना घटिया, इतना स्वार्थी, इतना चालाक, इतना बेईमान, इतना कृपण होता हुआ चला जा रहा है। इस जमाने में आदमी इतना ठग होता हुआ चला जा रहा है कि मुझे शक है कि यही ठगी, यही कृपणता और यही स्वार्थपरता जो आज हमारे और आपके ऊपर हावी हो गई है, अगर इसी हिसाब से, इसी क्रम से चली तो एक आदमी दूसरे आदमी को थोड़े दिनों में फाड़कर खाने लगेगा और दूसरे आदमी को जिंदा निगल जाएगा। आदमी को अपनी छाया पर विश्वास नहीं रहेगा कि यह मेरी छाया है कि नहीं, और यह कि मेरी छाया मेरी सहायता करेगी कि नहीं। आज यूरोप में यही स्थिति है। दाम्पत्य जीवन के बारे में इतनी मुश्किल, इतनी दूरियां पैदा हो गई हैं कि मियां बीबी साथ रहते हैं पर यह ख्याल करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि यह हमको डस ले। मर्द के बारे में बीबी यही सोचती रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल मियां हमको डस ले। औरत के बारे में मर्द भी यही सोचता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि औरत हमको डस ले। दोनों सावधान भी रहते हैं और प्यार मोहब्बत की बातें भी करते हैं, इधर उधर की बात भी करते हैं, लेकिन दांव पर बिल्कुल सावधान रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसके साथ साथ में हम बेमौत मारे जाएं। इतना खतरा दुश्मनों से नहीं है जितना कि मित्रों से है।
भौतिकवादी स्वार्थपरता। मित्रों, आज ऐसी ही विचित्र स्थिति है कि हम कुछ कह नहीं सकते।
दुनिया की जैसी विचित्र स्थिति है उसकी भयानकता आज आपके सामने खड़ी है। युग का एक पक्ष विनाश के लिए मुंह फाड़ करके खड़ा है अगर इसी क्रम से जिस राह पर आज हम चल रहे हैं, वैज्ञानिक प्रगति कर रहे हैं, मनुष्यों के भीतर स्वार्थपरता की वृद्धि हो रही है, मनुष्य का संतानोत्पादन के ऊपर नियंत्रण का अभाव है।
यदि यही क्रम चला, अगर यही स्थिति बनी रही तो दुनिया नष्ट हो जाएगी, आप ध्यान रखना।
100 वर्ष के बाद हम तो जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन आप में से कोई रह जाए तो देखना कि दुनिया का क्या हाल होता है। एक और स्थिति है, जिसके ख्वाब हम देखते हैं, जिसके सपने हम देखते हैं।
हाँ बेटे,
हम सपने देखते हैं। हमारे सपनों की दुनिया बड़ी खूबसूरत है। यह ऐसी दुनिया है जिसमें प्यार भरा हुआ है, मोहब्बत भरी हुई है और विश्वास भरे हुए हैं, एक दूसरे के सहकार भरे हुए हैं, एक दूसरे की सेवा भरी हुई है। कितनी मीठी और कितनी मधुर दुनिया है यह, जो हमारे दिमाग में घूमती है।
अगर हमारे सपने कदाचित साकार हो गए तो यह बड़ा हुआ विज्ञान, यह बड़ा हुआ धन, यह बड़ी हुई विद्या, आदमी के लिए इतनी बड़ी हुई सुविधाएं, मैं सोचता हूं कि स्वर्ग के वातावरण को उतार करके जमीन पर ले आएंगी। हजारों लाखों वर्ष पूर्व न सड़कें थी, न बिजली थी, न रोशनी थी, न टेलीफोन था, न डाकखाना था, कुछ भी नहीं था।
ऐसे अभावग्रस्त जमाने में भी जब लोग स्वर्गीय जिंदगी जिया करते थे तो आज की बेहतरीन परिस्थितियों में दुनिया में इतनी शांति, इतनी सरसता, इतना सौंदर्य, इतना सुख पैदा कर सकते हैं कि हम कह नहीं सकते।
एक चौराहे पर मनुष्यता। मित्रों,
आज जिस चौराहे पर हम खड़े हुए हैं वह है एक विनाश का चौराहा और दूसरा है उन्नति का चौराहा। इस उन्नति में क्या होने वाला है, इसके लिए आपको अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। कास्टिंग वोट आपका है। 2 वोट बराबर होते हैं।
1 वोट प्रेसिडेंट का होता है।
प्रेसिडेंट दोनों वोट बराबर वालों में से जिसको चाहे उसी के पक्ष में डाल सकता है, उसे ही जिता सकता है। आप लोग बैलेंसिंग पावर में हैं। आप चाहे तो अपना वोट उसकी ओर डाल सकते हैं जो पक्ष विनाश की ओर जा रहा है। आप चाहे तो अपना वोट उस पक्ष में भी डाल सकते हैं जो सुख और शांति लाने के लिए जा रहा है। मैं सोचता हूं कि आपको ऐसा ही करना चाहिए। सुख और शांति के लिए ही अपना वोट डालना चाहिए और आपको अपनी वर्तमान जिंदगी जानवरों के तरीके से नहीं काटनी चाहिए। आपको अपनी वर्तमान जिंदगी मनुष्यों के तरीके से, विचारशीलों के तरीके से, समझदार लोगों के तरीके से खर्च करनी चाहिए।
देवता साथ चले श्रीराम के। मित्रों, यह विशेष समय है।
ऐसा समय फिर आने वाला नहीं है। आपको शायद मालूम नहीं है कि किसी जमाने में रामचंद्र जी का अवतार रावण के राज्य को खत्म करने के लिए हुआ था।
रावण एक व्यक्ति तो नहीं था, वह तो एक विचारधारा थी जो पंचवटी से लेकर के वहां तक फैली हुई थी, जिसने दूर तक आधे हिंदुस्तान को जकड़ लिया था। रावण कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं था, वह तो एक संस्कृति थी, एक विचारधारा थी।
उसको हटाने के लिए रामचंद्र जी अकेले कुछ नहीं कर सकते थे।
अकेले रामचंद्र जी का तीर कमान क्या कर लेता।
उसको हटाने मिटाने के लिए बहुत से लोगों के काम करने की जरूरत थी, जैसे कि इस समय में है। रामचंद्र जी का जब अवतार हुआ तो देवताओं ने कहा कि आपके साथ साथ हम भी चलेंगे, क्योंकि आप अकेले वह काम नहीं कर सकते। देवताओं से भगवान ने कहा कि अगर आप मनुष्य के शरीर में जाएंगे तो मनुष्य बड़ा चालाक है और बड़ा बेईमान है। मनुष्य बड़ा स्वार्थी है और बड़ा घटिया है। आप भी जाएंगे तो उसी नमक के सागर की झील में आप भी नमक हो जाएंगे और मनुष्य होकर के आप चालाकियों के सिवाय और कुछ नहीं कर सकेंगे। क्या भरोसा कि आप में ये सब दुर्गुण नहीं आ पाएंगे। श्रेष्ठ कामों के लिए आप बलिदान नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप लोग मनुष्य योनि के अलावा किसी और योनि में हमारे साथ चले तो अच्छा है।
एक से एक जबरदस्त आदमी। मित्रों,
देवताओं ने रीछ बंदरों की योनियों में रहना पसंद किया। रामचंद्र जी जब अपना काम करने के लिए चले, धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए चले, तो देवता भी रीछ वानरों के रूप में साथ साथ चले। आप सबको इतिहास मालूम है और आप सबने रामायण भी पढ़ी है।
उसका क्या परिणाम निकला और क्या नतीजा हुआ? उसका अच्छा परिणाम निकला और यह नतीजा हुआ कि रामराज्य की स्थापना हुई और अनीति का विनाश हुआ, साधुता का परिष्कार हुआ और देवत्व का विकास हुआ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण आए थे, तब भी ऐसा ही हुआ था।
देवता लोग गोपों के रूप में, पांडवों के रूप में साथ साथ आए थे। 5 पांडवों का किस्सा तो आपको मालूम ही है कि उनमें से एक धर्मराज का बेटा था, एक इंद्र का बेटा था और एक वायु का बेटा था। ऐसे ही जो गोप थे वे भी देवताओं के प्रतीक थे।
ग्वाले ग्वालिने भी ऐसे ही देवताओं के प्रतीक थे।
उनके साथ साथ आदमी भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए आए। मैं विचार करता हूँ कि भगवान जब बुद्ध के रूप में एक नया युग लाने के लिए अवतरित हुए थे तो उनके साथ में भी ऐसे ही जीवत वाले आदमी आए थे।
आनंद ऐसे ही जबरदस्त आदमी का नाम था। कुमार जी वैसे ही जबरदस्त आदमी थे।
सभी के नाम बताने से क्या फायदा है।
बस इतना जान लीजिए कि उस समय एक से एक बढ़िया और जबरदस्त आदमी आए थे। उन्होंने न केवल हिंदुस्तान वरन सारे के सारे एशिया का कायाकल्प कर दिया।
न केवल एशिया का वरन यूरोप के बहुत से हिस्से में वे लोग चले गए, न केवल यूरोप में बल्कि अफ्रीका में अभी भी अपनी भारतीय संस्कृति सभ्यता के निशानात पाए जाते हैं। ये उसी जमाने के हैं।
वे अमेरिका भी गए हैं। अमेरिका की मय सभ्यता उस जमाने की है जिस जमाने में बौद्ध काल था।
वे बड़े जबरदस्त आदमी थे जिन्होंने नावों में सवार होकर महीनों समुद्र के सफर किए, छोटी छोटी नावों पर सवार होकर लंबे लंबे सफर किए थे और ज्वार भाटे का मुकाबला करते हुए, दलदलों का मुकाबला करते हुए, पहाड़ों की ऊंची चोटियों का मुकाबला करते हुए दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा पहुंचे थे। मैं समझता हूं कि बुद्ध के साथ आने वालों का नाम भी देवताओं में गिना जाना चाहिए।
गांधी जी के साथ भी कुछ ऐसे ही विलक्षण आदमी आ गए थे जिन्होंने दुनिया का कायाकल्प कर दिया और हिंदुस्तान की हजारों वर्षों की गुलामी को धोकर के फेंक दिया।
एक विशेष समय में आए हैं हम
मित्रों,
एक विशेष कार्य को पूरा करने के लिए, विशेष जिम्मेदारियों को निभाने के लिए केवल एक ही आदमी नहीं आता, वरन कई आदमी आते हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि ये वर्ष भी कुछ इसी तरह के हैं। हम और आप छोटे आदमी मालूम पड़ते हैं। रीच बंदरों के बारे में भी शायद लोगों ने यही ख्याल किया होगा। श्रीकृष्ण और दूसरे ग्वाल बालों के बारे में भी लोगों ने ऐसा ही ख्याल किया होगा जैसा कि हमारे और आपके बारे में किया जाता है। पर मैं आपको एक बात नोट करा देना चाहता हूँ कि हम और आप एक विशेष समय में पैदा हुए हैं और एक विशेष जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर के आए हैं, ऐसी जिम्मेदारी जिसमें कि सारी मनुष्य जाति का भाग्य या तो खत्म होने वाला है या हमारी मनुष्य जाति सामूहिक रूप से आत्महत्या करने वाली है या फिर हम सुनहले दिन देखेंगे, बदले हुए युग के दिन देखेंगे, सत्ययुग के दिन देखेंगे, रामराज्य के दिन देखेंगे, सुख शांति के दिन देखेंगे,
स्वर्ग के दिन देखेंगे।
या तो वैसा होना है या फिर ऐसा होना है। आप नर पशु जैसा जीवन न जिए
मित्रों,
आपको अपना कास्टिंग वोट इस जमाने में इसी काम के लिए खर्च करना चाहिए। यह समय चला जाएगा, रहेगा नहीं। आप यदि कहें कि हम नहीं करेंगे तो भी बेटे काम हो जाएगा। भगवान जो काम कराना चाहते हैं किसी से भी करा लेते हैं, मिट्टी के टुकड़े और ढेले से करा लेते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो किसी और से करा लेंगे, पर यह आपकी जिंदगी में सबसे बड़े दुर्भाग्य की दुर्घटना होगी और एक बड़ी दुर्घटना होगी। अगर इस समय आपने वही काम करना शुरू कर दिया जो कि जानवर करते हैं, कीड़े मकोड़े करते हैं, तो क्या बात हुई। जानवरों और कीड़े मकोड़ों के सामने दो के अलावा तीसरा कोई मकसद नहीं है। उनमें से एक है पेट भरना और दूसरा है संतान पैदा करना। दो के अलावा उन्हें तीसरा कोई ख्वाब भी नहीं आता। सारी इच्छाएं इन्हीं के अंदर आ करके इकट्ठी हो जाती हैं। मनुष्य जरा समझदार है। पेट भरने को हम पैसा कमाना कह सकते हैं और काम वासना का जरा बड़ा हुआ रूप लग्जरी कह सकते हैं।
लग्जरी, पैसा संग्रह, विलास, बस इसके अलावा और कुछ लक्ष्य नहीं होता।
कीड़े का यही है, कुत्ते का यही है, बंदर का यही है, सुअर का यही है, चींटी का यही है, इसके अलावा तीसरी बात इनके दिमाग में कभी नहीं आती।
न कोई सिद्धांत, न दर्शन। साथियों,
वे भी बड़े घटिया आदमी हैं जिनके पास न कभी सिद्धांत आता है, न कभी दर्शन आता है, न कोई आदर्श आता है, कुछ नहीं आता है, केवल पेट और औलाद के अतिरिक्त तीसरी कोई बात समझ में नहीं आती। राम नाम लेते हैं।
अरे ये दुष्ट काहे का राम नाम लेंगे।
किसी राम का नाम नहीं लेंगे। जहां कहीं भी जाएंगे इसी चक्कर में जाएंगे। कहां गए थे
साहब?
मनसा देवी पर गए थे।
अच्छा,
मनसा देवी पर क्या किया? मनसा देवी से अपनी मनोकामना पूरी कराने के लिए प्रार्थना की। आपकी क्या मांग थी
साहब?
15 पैसे की एक खपच्ची फाड़कर ले गए और वहां जो पेड़ थे उन पर रस्सी से बांधकर आए और यह कहकर आए कि मनसा देवी,
मनसा पूरी करना तो हम फिर दोबारा आएंगे।
आपकी क्या मनसा थी जरा बताए तो सही, जिससे हम भी आपकी मदद करें।
अरे साहब, दो ही मनसाएं हैं, तीसरी कोई मनसा नहीं है। पैसा चाहिए और औलाद चाहिए, वासना चाहिए, तृष्णा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बेटे
ये बड़ी घटिया चीजें हैं। ये ऐसी घटिया चीजें हैं कि इन्हें हल्के से हल्का, छोटे से छोटा, नाचीज से नाचीज, वाहियात से वाहियात जीव भी पूरी कर सकता है। यह मनुष्य की ऊंचाइयों की निशानियां नहीं है। मनुष्य की ऊंचाइयां और मनुष्य की महानताएं केवल उसके चिंतन और दृष्टिकोण के आधार पर परखी जा सकती हैं, शक्ति के हिसाब से नहीं, पैसे के हिसाब से नहीं, विद्या के हिसाब से नहीं, हथियार के हिसाब से नहीं, पद के हिसाब से नहीं, किसी हिसाब से नहीं परखी जा सकती। हम किसी आदमी की वक़्त और किसी आदमी का मूल्य या मूल्यांकन कर सकते हैं तो केवल इस आधार पर कर सकते हैं कि इसके विचार करने के तरीके क्या हैं, इसका मकसद क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इसके अलावा कोई चीज नहीं है।
जीवन को धन्य बना लो रे मित्रों।
आज आपका यह जन्म ऊंचे उद्देश्यों के लिए ऊपर उठे तो आपका जीवन सार्थक हो सकता है और हमारे प्रयास सार्थक हो सकते हैं। आप भी उन्हीं लोगों में से हैं, उन्हीं जीवात्माओं में से हैं जो विशेष समय में विशेष काम के लिए विशेष अवतार लेकर के आए। अच्छा होता आप इस बात को जान पाते, अच्छा होता कि आप यह समझ पाते कि ऐसा वक्त बार बार नहीं आने वाला है।
एक जमाना आया था जब स्वराज्य आंदोलन में सैकड़ों आदमी जेल गए।
किसी के फोटो छपते हैं, किसी की जन्म जयंतियां मनाई जाती हैं। कोई मिनिस्टर हो गया, कोई अभी भी मिनिस्ट्री की गद्दी पर बैठा हुआ है, कोई राष्ट्रपति हो गया, कोई प्रधानमंत्री हो गया, कोई मुख्यमंत्री हो गया है। इनमें से अधिकांश छह छह महीने के लिए जेल गए थे। क्यों साहब,
हमको भी मुख्यमंत्री बनवा दीजिए।
हम भी छह महीने के लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं। नहीं बेटे,
वह वक्त अब चला गया।
अब तो छह महीने तो क्या, छह साल के लिए जेल चला जा तो भी तू मिनिस्टर नहीं बनने वाला है। नहीं साहब,
हमको भी मिनिस्टर बनवा दीजिए।
नहीं बेटे, अब नहीं बनवा सकते,
वह समय चला गया।
आकांक्षाएं ऊंची हों, उमंगे हों,
साथियों
यह समय ऐसा है कि अगर आप इसको पहचान पाए, देख पाए, समझ पाए तो आपके मन में एक निष्ठा उत्पन्न होनी चाहिए कि हमारी यह जिंदगी घटिया कामों के लिए नहीं है।
घटिया काम मैं कहता हूँ औलाद और पैसा को, वासना और तृष्णा को।
अगर आप इसे बड़प्पन कहें तो कहते रहें, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इंसान की वक़्त, इंसान की तौल उसके पैसे से मूल्यांकित नहीं कर सकता और न उसकी शिक्षा से कर सकता हूँ, न उसकी ऐयाशी से कर सकता हूँ। आदमी का वज़न और वक़्त एक ही चीज़ से तौली जा सकती है कि आदमी आखिर विचारता क्या है, सोचता क्या है,
उसकी आकांक्षा क्या है, उद्देश्य क्या है।
अगर आप इस तरीके से कर पाए तो आप धन्य हो जाएंगे।
मैं धन्य हो जाऊंगा।
अगर आप समय को पहचान पाएं, अपने आप को आप पहचान पाएं, अपनी जिम्मेदारियों को आप समझ पाएं तो मित्रों आपके भीतर से तुरंत एक ऐसी हूक और एक ऐसी उमंग उठेगी जो आपको इस बात के लिए मजबूर करेगी कि आपको अपनी दिशाएं बदल देनी चाहिए। अभी आप जिस तरह की जिंदगी व्यतीत करते आ रहे हैं वह घटिया किस्म की जिंदगी है। आपको बची हुई जिंदगी बेहतरीन कामों में खर्च करनी चाहिए। नहीं साहब, हमारा पेट कैसे भरेगा।
बेटे तेरा पेट भर जाएगा, मैं तुझे यकीन दिलाता हूँ कि तेरा पेट भर जाएगा।
जब चींटी का पेट भर सकता है, कुत्ते का पेट भर सकता है, बंदर का पेट भर सकता है तो फिर तेरा पेट क्यों नहीं भरेगा। कितना बड़ा पेट है तू मुझे दिखा तो सही। छह इंच का तेरा पेट है और छह फीट की तेरी काया है। छह इंच के पेट के लिए कितनी रोटियां चाहिए।
चार रोटी चाहिए, छह रोटी चाहिए।
पेट के लिए मरा जाता है मूर्ख, जिसके सामने न कोई सिद्धांत है न कोई आदर्श, केवल पेट के लिए मरता है, पेट के अलावा कोई बात नहीं सोचता।
यह अध्यात्म सच्चा अध्यात्म नहीं मित्रों।
मैं चाहूंगा कि आप लोगों का भजन, आप लोगों का चिंतन, आप लोगों का ध्यान और आप लोगों का अध्यात्म भगवान करे ऐसा हो जिसमें से आपके भीतर से कुछ सिद्धांतवादिता के लिए, कुछ आदर्शवादिता के लिए उमंगे उठें। अगर आप में उमंगे न उठ सकी तो मैं आपके अध्यात्मवाद की प्रशंसा नहीं कर सकता।
अगर आपके अध्यात्मवाद ने आपसे सिर्फ इतना ही कहा कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए,
तीन माला गायत्री का जप करना चाहिए और केवल देवी का पाठ करना चाहिए तो मैं ऐसे अध्यात्म के ऊपर लानत भेजता हूँ जो अध्यात्म केवल माला घुमाने तक और थोड़े शब्दों का उच्चारण करने तक सीमित हो जाए और मनुष्य को सिद्धांतों के लिए, आदर्शों के लिए, कुछ ऊंचे कामों के लिए एक और उमंग पैदा न कर सके तो मैं उसे क्या कह सकता हूँ।
बेटे
ऐसे अध्यात्म के लिए मेरे मन में कोई जगह नहीं है और मैं ऐसे अध्यात्म की सराहना कभी भी नहीं करूंगा जिसने कि मनुष्य के भीतर में हलचल पैदा न की, मंथन पैदा न किया।
मित्रों मैं चाहूंगा कि यह बात आपको हमेशा याद बनी रहे कि इस बेशकीमती जिंदगी का बेहतरीन उपयोग करना चाहिए।
आप इस बात को कभी भी भूलने न पाएं और आप यह कहें कि शिवरात्रि के दिन आचार्य जी ने एक ऐसा स्मरण दिलाया था और यह कहा था कि आप सब बात भूल जाना, पर यह बात मत भूलना कि कल परसों आपको भगवान के दरवाजे पर जाना पड़ेगा। आपसे वहां सिर्फ एक ही बात पूछी जाएगी कि आपको इतनी बेशकीमती जिंदगी जिस काम के लिए दी गई थी आपने उसे पूरा किया कि नहीं किया। तब आप यह जवाब देकर पिन छुड़ाना चाहते हो तो ध्यान रखिए कि इस जवाब को न कोई सुनने को तैयार होगा और न इस जवाब का कोई वक्त होगा। नहीं साहब,
हमने तो तीन माला हनुमान जी की जपी थी, एक माला गणेश जी की जपी थी, एक माला शंकर जी की जपी थी।
भाड़ में गया तू और ऊपर से गिरा तेरा शंकर। माला जपी थी कि कोई मशीनगन लिए बैठा है।
बेटे, माला जपने का इतना ही मतलब है कि हम अपने मन की मलिनता को साफ करें, ताकि जीवन का उद्देश्य और दृष्टिकोण साफ दिखाई पड़े।
इसके अतिरिक्त उसका मकसद कोई और नहीं हो सकता। माला जपने से, खुशामद से कुछ नहीं होगा।
मित्रों,
माला जपने से, भगवान जी की खुशामद करने से कोई काम चल सकता है, मैं ऐसा नहीं मानता। भगवान जी को आप कोई चीज रिश्वत के रूप में दे तो वे आपकी हिमायत करेंगे, फेवर करेंगे, मैं ऐसा नहीं मानता। आप भजन करें तो अच्छी बात है, न करें तो भी चलिए, मैं कहता हूँ कि आपका काम चल जाएगा, लेकिन कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों की अवहेलना करके यदि आप यह ख्याल किए बैठे हों कि यह जप करेंगे और वह जप करेंगे तो भगवान जी प्रसन्न हो जाएंगे, तो बेटे ऐसा कभी नहीं हो सकता।
बनाए पंचशीलों द्वारा अगली योजना। इसलिए मित्रों,
आज की मेरी बात अगर आपकी समझ में आ जाए तो इसकी पहचान यही है कि आपके हृदय में ऐसे परिवर्तन की दृष्टि उत्पन्न होनी चाहिए कि हमारा पिछला जीवन तो जो चला गया सो चला गया, अब अगला जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मजा आ जाएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके भीतर से यह हूक उठेगी कि भावी जीवन की रूपरेखा क्या हो, भावी जीवन की गतिविधियां क्या हो, भावी जीवन की प्लानिंग क्या हो। जिस तरीके से पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं, आप अपनी बची हुई जिंदगी के लिए पंचवर्षीय योजना या बाकी जिंदगी की योजना पंचशीलों द्वारा बनाकर के ले जाएं तो हमारा यह शिविर सार्थक हो जाएगा और हमारा वानप्रस्थ जीवन धन्य हो जाएगा। अगर आपके मन में ऐसी स्कीम या योजना उठ सके तब, क्योंकि यह एक विशेष समय है और आप विशेष उद्देश्य और विशेष जिम्मेदारी लेकर के आए हैं। अगर आप इसको पूरा कर सकते हो तो करना, विचार कर सकते हो तो विचारना, सोच सकते हो तो सोचना, तैयारी कर सकते हो तो करना, हिम्मत इकट्ठी कर सकते हो तो करना। हमारी एक ही प्रार्थना है कि कदाचित आपकी समझ में आ जाए तो करना, न समझ में आए तो आपकी मर्जी की बात है।
क्रमशः
पहले आप पढ़ चुके हैं कि यह युग परिवर्तन का विषम समय है। विज्ञान की प्रगति के साथ विकास का क्रम भी तेजी से बढ़ रहा है। मनुष्य गुणवत्ता की दृष्टि से घटिया हो गया है। परस्पर शंका और अविश्वास के वातावरण में जी रहे हैं सब। संतानोत्पादन पर नियंत्रण के अभाव के कारण विश्व की आबादी बढ़ती चली जा रही है।
जब रावण ने आतंक फैलाया तो देवी देवताओं के साथ भगवान राम आए। श्री कृष्ण, बुद्ध और गांधी के साथ भी ऐसा हुआ।
अभी भी ऐसा ही विशेष समय है।
हमें नर पशु जैसा जीवन न जीकर जीवन को धन्य बनाने के विषय में सोचना चाहिए।
जिंदगी बेहतरीन कामों में लगनी चाहिए।
सच्चे अध्यात्म को जीवन में उतारना चाहिए।
इसके लिए कुछ पंचशीलों का पालन अनिवार्य है। अब आगे पढ़ते हैं कि पूज्य गुरुदेव क्या कह रहे हैं।
अपनी जिम्मेदारी समझें। मित्रों,
मैंने आपसे यह कहा था कि आपके जिम्मे जो काम सौंपे गए हैं, बड़े काम सौंपे गए हैं। आपके जिम्मे सामान्य काम नहीं सौंपे गए हैं।
सामान्य काम मकान बनाने का है।
बिल्डिंग बन रही है, मजदूर बना रहे हैं,
यह सामान्य काम है। कुआं खोदने का काम सामान्य काम है। फैक्ट्री चलाना सामान्य काम है।
लेकिन मनुष्य के दिलों को बदल देना बहुत मुश्किल काम है। शरीर की बीमारियों को ठीक करना कितना मुश्किल होता है, आप डॉक्टरों से पूछिए ना।
क्यों साहब? यह बड़ा कमजोर आदमी है, इसको मोटा बना दीजिए। कोशिश करेंगे साहब, दवाइयां खिलाएंगे, टॉनिक खिलाएंगे, शायद मोटा हो जाए।
नहीं साहब, यह बहुत कमजोर रहता है, अच्छा कर दीजिए।
कोशिश करेंगे कि अच्छा हो जाए।
शरीरों को ठीक करना ही जब मुश्किल होता है, गरीबी को दूर करना ही मुश्किल होता है, आदतों को ठीक करना ही मुश्किल होता है,
फिर आदमी के ईमान को बदल देना कितना मुश्किल काम है।
100 में से 1-2 आदमी भी नहीं बदल पाते हैं। आप यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम लाखों आदमियों के ईमान में, दृष्टिकोण में और चिंतन में हेर फेर पैदा करेंगे। यह कितना कठिन और मुश्किल काम है, आप समझते नहीं क्या?
आप अपने काम को समझिए। मित्रों,
इस काम को करने के लिए अगर आपको खिलवाड़ करनी हो, मजाक बनाना हो, विडंबना करनी हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। इस संबंध में जो कर्तव्य और उत्तरदायित्व आपने अपने कंधों पर ओढ़ने की कोशिश की है, अगर आप उसके प्रति ईमानदार हैं और आप उसके वजन को समझते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इतना बड़ा काम एक दुस्साहस के बराबर है। इस दुस्साहस के लिए आपको अपने भीतर कुछ नई चीजें पैदा करनी चाहिए। पानी के ट्यूबवेल लगाने वाले और बोरिंग करने वाले जानते हैं कि जो भारी चट्टानें जमीन में से निकलती हैं उनमें सुराख कैसे किया जाता है और चट्टानों को कैसे पार किया जाता है। उनके जो बर्मे होते हैं, ड्रिल मशीनें होती हैं, उनकी नोक पर डायमंड लगा होता है। डायमंड हीरा में यह ताकत है कि वह लोहे में और दूसरी चीजों में, पत्थर और चट्टान में सुराख करता हुआ चला जाता है। डायमंड की नोक ना हो तो लोहे की लगा दे तब तब बेटे वह मुड़ जाएगी, चट्टान में सुराख हो जाएगा।
नहीं बेटे, नहीं होगा, लोहे की नोक मुड़ जाएगी, मारी जाएगी,
मशीन भी बेकार हो जाएगी और नोक भी बेकार हो जाएगी,
पत्थर में सुराख भी नहीं हो सकेगा। आप मजबूत मनोबल संपन्न बने। साथियों,
आपको अपने स्वयं की बाबत, अपने संबंध में कुछ ऐसी मजबूती पैदा करनी चाहिए जो दूसरे लोगों के मुकाबले में ज्यादा अच्छी हो और दूसरे लोगों की अपेक्षा आप ज्यादा मनोबल संपन्न हो।
आप दूसरे लोगों की अपेक्षा ज्यादा चरित्रवान हो। आप दूसरे लोगों की अपेक्षा ज्यादा मजबूत आदमी हो।
अगर आप मजबूत आदमी हैं तो मैं विश्वास करूंगा कि आप चट्टानों में सुराख कर सकते हैं। अगर आप दूसरे आदमियों के मुकाबले में मजबूत आदमी नहीं हैं तो आपके लिए मुश्किल पड़ेगी। आप चट्टानों में सुराख नहीं कर पाएंगे।
आप असफलता का रोना रोते रहेंगे।
शाखा बंद हो गई साहब, कोई सुनता ही नहीं,
सब बेकार आदमी हैं। हाँ बेटे, ये चट्टानें थी, हमने तुझे भेजा था कि इनमें सुराख कर देना, तूने सुराख किया।
नहीं साहब,
नहीं किया,
वे सब बड़े खराब हैं।
हाँ बेटे,
तेरा कहना बिल्कुल सही है, वे सब बड़े खराब हैं जिनके तू नाम गिना रहा है। लेकिन तू कैसा है?
साहब, मैं तो बड़ा अच्छा हूँ। चुप, दुष्ट कहीं का।
तू अच्छा रहा होता तो कितनों को पार कर दिया होता और कितनी ही चट्टानों में सुराख कर दिया होता।
मित्रों, क्राइस्ट अकेले ही आए थे और सारी दुनिया के 100 करोड़ आदमी ईसाई धर्म में दीक्षित हो गए थे। बुद्ध अकेले आए थे, बुद्ध के साथ कितने आदमी थे? अकेले थे, अकेले बुद्ध ने सारी दुनिया की फिजा बदल कर रख दी थी।
7 ऋषि आए थे और 7ों ऋषियों ने 7 द्वीपों को कंट्रोल किया था। तू कैसा है?
नहीं साहब, मेरी कोई नहीं सुनता।
तेरी कोई नहीं सुनता है तो अपना मुंह शीशे में देख करा। अमुक बहुत अच्छा है और अमुक बड़ा खराब है। दुनिया भर की रामकहानी कहता है और अपनी बाबत कुछ नहीं कहता।
नहीं साहब, हम तो बहुत अच्छे हैं।
बेटे, अगर तू अच्छा होता तो तूने हवा बदल दी होती, जमाना बदल दिया होता।
मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, यह कहकर अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए दूसरे लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, हमको सुनाता है और हमारा समय व दिमाग खराब करता है। खुद तो ठीक होता नहीं है और दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाता रहता है। संस्कारों से पूरित हों।
मित्रों,
क्या करना पड़ेगा हमको दूसरों की तुलना में अपने आप को बेहतरीन बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए कुछ काम करने पड़ेंगे, अपने ऊपर कुछ संस्कार डालने पड़ेंगे। क्या काम करने पड़ेंगे?
मैंने अब पंचकोश की साधना कराने, उपासना सिखाने का निश्चय किया है।
थोड़े दिन पीछे आप देखेंगे कि इसी शिविर में आपको पंचकोशों की उपासना के बारे में, वानप्रस्थ की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को सिखा देने के बाद में पंचकोशों की उपासना की बाबत सिखाऊंगा।
गायत्री के 5 मुख होते हैं और हमारे शरीर के भीतर 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश।
इन कोशों को जागृत करने के लिए मैं उपासना सिखाऊंगा। मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान भी दिया है, शिक्षा भी दी है, साधन भी दिए हैं और आकल भी दी है, लेकिन सबसे ज्यादा कीमती चीज जो मुझे उन्होंने दी है वह है मेरा रूहानी बल, आत्मबल। उन्होंने हमें आत्मबल दिया है। आत्मबल को विकसित करने के लिए हमको अपने भीतर के 5 तत्व और 5 प्राण, इन दोनों को परिष्कृत करना पड़ेगा।
5 तत्व, पंच प्राण, ब्रह्मचर्य।
5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। इसकी मिट्टी ऐसी वाहियात है कि बस बालू के तरीके से बिखर जाती है। बेहतरीन मिट्टी के, चिकनी मिट्टी के हम बने तो हमारा खिलौना टिकाऊ बना रह सकता है, परंतु यह बालू का बना है जो टूटता है, बिखर जाता है। हमारे 5 तत्वों को उत्कृष्ट बनाने के लिए पंचकोशों की उपासना करना आवश्यक है। जिसको हम चेतना कहते हैं वह हमारे 5 प्राणों से जुड़ी हुई है।
हमारे 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान।
ये जो हमारे 5 प्राण हैं, इनको भी 5 तत्वों के तरीके से बेहतरीन और मजबूत होना चाहिए।
हमारी चेतना मजबूत, हमारा बहिरंग मजबूत, हमारा अंतरंग मजबूत हो, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? साधना करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए।
उपासना के लिए मैं ब्रह्मवर्चस बना रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि आप लोग यहाँ हमारे पास रहकर उपासना करें। कुछ साधनाएं ऐसी हैं कि कुछ लोगों को मैं घर रहकर बता सकता हूँ।
आपको जप और ध्यान की बाबत, की उपासना की बाबत, खेचरी मुद्रा का संपुट लगाने की बाबत मैंने पहले बता भी दिया है पिछले वर्ष। आप अपनी इस उपासना को अपने घर पर जारी रखिए।
यह बहुत अच्छी उपासना है। ठीक है, पहले इस उपासना में 45 मिनट का बंधन था, वह हमने निकाल दिया। इसे सवेरे सूर्योदय के पहले करना चाहिए, इस बंधन को भी निकाल दिया। अब आप किसी भी समय इस उपासना को कर सकते हैं और कितने भी समय तक कर सकते हैं। अब 45 मिनट का कोई बंधन नहीं है। 15 मिनट कर लीजिए, चाहे 2 घंटे कीजिए, वे सारी उपासनाएं आपके लिए खुली हुई हैं।
अब यहाँ जो ब्रह्मवर्चस बनेगा, यहाँ आकर के आप उपासना करना, अपने सामने मैं यह उपासना कराऊंगा,
जैसे मेरे गुरुदेव हमें बुलाते रहे हैं। महत्वपूर्ण उपासना करने का जब भी वक्त आया है, उन्होंने मुझे अपने नजदीक बुलाया है, पास बुलाया है, अपने संरक्षण में मुझे रखा है और अपनी छाती से लगा करके रखा है और वहीं उपासनाएं संपन्न कराए हैं। ब्रह्मवर्चस साधना के लिए मैं अभी से आपको निमंत्रण देता हूं कि आप ज्यादा समय के लिए कम से कम 1-2 महीने का समय निकालना और मेरे पास रहना।
वह उपासना मैं अपने सामने कराऊंगा।
बात पीछे की है, लेकिन उसकी जमीन को बनाने के लिए आपको अभी से तैयारी करनी चाहिए। बीज बोना बहुत आवश्यक है, लेकिन जमीन बनाना उससे भी ज्यादा आवश्यक है। फैक्ट्रियों में मशीनें बनाई जाती हैं, लगाई जाती हैं, कारीगर बुलाए जाते हैं, बिजली लगाई जाती है, पर सबसे पहले जमीन खरीदी जाती है। नहीं साहब,
जमीन मत खरीदिए, पहले मशीन लगा दीजिए।
कहाँ लगा दें? कहीं भी लगा दीजिए। नहीं बेटे, मशीन जमीन पर लगती है।
पहले तू फैक्ट्री का इंतजाम कर, जमीन खरीद, घेरा बना, शेड बना, फिर देख हम तेरे लिए मशीन लगवाएंगे, कारीगर बुलाएंगे, मिस्त्री बुलाएंगे, रॉ मटेरियल बुलाएंगे और तेरी फैक्ट्री चलाएंगे।
नहीं महाराज जी, कहीं भी लगवा दीजिए।
बेटे,
जमीन तेरे पास है नहीं, फिर मशीन लगाना बेकार है, फिर तेरे कारखाने की स्कीम बेकार है।
पहले जमीन तैयार कर।
पंचशीलों की तैयारी।
मित्रों, हमारी आध्यात्मिकता के पंचशील ऐसे हैं जिनकी आप पहले से तैयारी करके रखिए। जमीन बनाइए, बगीचा लगाने से पहले और खेत बनाने से पहले जमीन को तैयार कीजिए, गुड़ाई कीजिए, निराई कीजिए, हल चलाइए, खाद दीजिए, पानी दीजिए।
जब जमीन बिल्कुल तैयार हो जाए, तब आप कहना कि बीज बो लें।
अरे साहब, आप तो बेकार की बात करते हैं। खाद क्या लगाना, पानी क्या लगाना,
जुताई निराई गुड़ाई क्या करना, अंधाधुंध बीज बो दीजिए। अरे बेटे,
अंधाधुंध कैसे बीज बो दे, जमीन तो ऐसी कड़ी हो रही है जैसे पत्थर।
ऐसी स्थिति में हल तो नीचे नहीं घुसेगा, जमीन पर ही रहेगा।
जड़े नहीं फैली तो तेरा बीज और मारा जाएगा।
अरे साहब, आप तो बेकार की बहस करते हैं, आप तो बीज बो ही दीजिए।
आप तो पहले कुंडलिनी सिखा दीजिए।
मित्रों, आप तो कुंडलिनी पहले सीखना चाहते हैं, पंचकोश की साधना पहले ही सीखना चाहते हैं, जप करना पहले ही सीखना चाहते हैं, ध्यान करना पहले ही सीखना चाहते हैं।
गुरुजी,
हमें M0A0 करना है।
पहले M0A0 पास करा दीजिए, फिर B0A0 करूंगा।
फिर क्या करेगा?
फिर मैट्रिक करूंगा, फिर जूनियर हाई स्कूल करूंगा और फिर प्राइमरी स्कूल करूंगा और फिर उसके बाद A0B0C0D0 पढ़ना सीखूंगा। बेटा, पहले A0B0C0D0 कर ले, उसके बाद 5वीं पास कर ले, फिर जूनियर हाई स्कूल कर ले, फिर मैट्रिक पास कर ले, फिर B0A0 करना, इसके बाद MOAO कर ले।
तो क्या हर्ज है? नहीं महाराज जी, आप गलत कहते हैं और आपका कहना मैं नहीं मानूंगा। आप तो पुराने जमाने के आदमी हैं।
नई बात सुनिए, प्रगतिशीलता की बात सुनिए। पहले M0A0 कराए, पहले कुंडलिनी जगाए, पंचकोश जगाए, पहले शक्तिपात कीजिए।
तेरा सिर करें, मूर्ख कहीं का, यह कैसे हो सकता है?
पहले नहीं हो सकता,
पहले रास्ते पर चलना पड़ेगा, कायदे से चलना पड़ेगा।
नहीं साहब, हम तो कायदे से नहीं चलेंगे,
हम तो छलांग लगाकर जल्दी से वहां पहुंच जाएंगे। बेटे,
छलांग मारने का कोई कायदा न कभी था और न है, यह नेचुरल हाईवे है, यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है।
नहीं साहब,
आध्यात्मिकता के लिए शॉर्टकट बताइए और छलांग मारकर पहुँचा दीजिए।
नहीं बेटे,
हम नहीं पहुँचा सकते,
हम तो नेचुरल हाईवे से तुझे पहुँचाएंगे और उसी रास्ते से तुझे चलना पड़ेगा।
पंचकोशी उपासना की पूर्व तैयारी। मित्रों,
अपनी मनस्थिति को, मनोभूमि को परिष्कृत करने के लिए, पंचकोशों की उपासना के लिए जिस तरीके से मैं अगले दिनों की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसमें घास पैदा होगी और घास पैदा होने के बाद में उसमें से आपकी गाय के लिए दूध देने का इंतजाम हो जाएगा। घास से भी आपको इतनी आमदनी हो जाएगी कि आप 1 गाय पाल सकते हैं, बैल पाल सकते हैं, घोड़ा पाल सकते हैं।
ये सब चीजें आप जिस जानवर को खिलाएंगे वह दूध दे जाएगा।
आप खेती न करना चाहते हो तो न करना, घास से ही काम चल जाएगा। अगर आपका खेत जुता हुआ हो तो
जमीन साफ करना यानी आत्मशोधन। मित्रों,
आपको कुंडलिनी नहीं भी जगानी पड़े, गायत्री का जप नहीं भी करना पड़े, हनुमान चालीसा नहीं भी पढ़ना पड़े, तो भी आपकी जो जमीन ठीक हुई है उस जमीन पर ही इतनी आमदनी हो सकती है, इतनी उन्नति हो सकती है कि आप नास्तिक होकर भी जिए तो भी आप श्रेष्ठ आदमी हो सकते हैं। तब भी आप कार्ल मार्क्स के तरीके से ऋषि कहे जा सकते हैं।
नहीं साहब, अगर हम भजन नहीं करेंगे तो ऋषि कैसे हो जाएंगे?
बेटे,
ठीक है, तूने बीज नहीं बोया लेकिन जमीन तो साफ कर ली,
अब तू ऋषि हो जाएगा, अब हम तुझे कार्ल मार्क्स कहेंगे।
तू नास्तिक है ना?
हाँ साहब, मैं नास्तिक हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता।
तब भी बेटे, हम तुझे ऋषि कहेंगे क्योंकि तेरा जीवनक्रम इतना शुद्ध, इतना निर्मल, इतना पवित्र, इतना व्यवस्थित है कि जिसमें लोक मंगल की बात के अलावा कोई और बात है ही नहीं। तू कोई भजन नहीं करता है तो भी कोई बात नहीं है,
तू तो ऐसा ही निर्मल जीवन जी। इसलिए जमीन को बनाना आवश्यक है। जमीन बनाने की महत्ता पर मैं ज्यादा ध्यान दूंगा और आपको यह कहूंगा कि आप भजन पूजन के महत्व पर इतना ध्यान देने की अपेक्षा अपना सारा ध्यान इस बात पर केंद्रीभूत करें कि हमारा जीवनक्रम इतना ज्यादा संस्कारी, इतना ज्यादा सुयोग्य, इतना ज्यादा सुसंस्कृत, इतना ज्यादा श्रेष्ठ, इतना ज्यादा समुन्नत बन सकता है।
अगर आप इस बारे में ध्यान देंगे तो आपकी शक्ति के बारे में कोई ठिकाना नहीं होगा।
आपकी शक्ति किसी के रोके नहीं रुकेगी।
छोटे छोटे आदमियों की शक्ति को आपने देखा नहीं था?
मीरा एकदम मामूली सी महिला थी और कबीर एकदम मामूली आदमी थे। रैदास एकदम मामूली आदमी थे। सूरदास एकदम मामूली आदमी थे। तुलसीदास बिल्कुल मामूली आदमी थे। समर्थ गुरु रामदास बिल्कुल मामूली आदमी थे। ज्ञान की दृष्टि से और औकात की दृष्टि से, परिस्थितियों की दृष्टि से बिल्कुल छोटे आदमियों के नाम मैंने आपको गिनाए, लेकिन उनका अंतरंग इतना श्रेष्ठ था कि उसकी वजह से वे जमीन से लेकर के आसमान तक उठते हुए चले गए।
अपनी कुटिया में अकेले रहें।
मित्रों,
अगर आपको याद करने का मौका मिले तो इन पांच बातों को अच्छे तरीके से अपने भीतर आप धारण करने जमाने की कोशिश करें और तैयारी करें। इन्हें पंचशील कहते हैं। जनवरी की अखंड ज्योति में पंचशील नाम से मेरा एक लेख गया है, अपनों से अपनी बात,
उसी का सारांश समझा रहा हूँ, उसको आप फिर से पढ़ें,
बार बार पढ़ें, तब आपकी समझ में आएगा कि गुरुजी ने पांच शिक्षाएं ऐसी दी हैं जो पांच रत्नों के बराबर हैं।
पंचकोशों की जागृति के लिए अब मैं मूलभूत आधार कहता हूँ।
इनमें से सबसे पहला आधार यह है कि आप अपनी एक अलग दुनिया बना लीजिए और उसी में रहना शुरू कर दीजिए। लोग कायाकल्प के लिए एक अलग झोंपड़ी बनाते हैं, एक कुटिया अलग बनाते हैं।
महामना मालवीय जी को एक महात्मा ने कायाकल्प कराया था।
मथुरा जिले में कोसी नामक एक जगह है, वहीं पर वे स्वामी जी रहते थे।
मालवीय जी से उनकी जान पहचान थी।
उन्होंने कहा कि मैं आपको बुढ़े से जवान बना दूंगा और आपको 40 दिन हमारे पास रहना पड़ेगा।
मालवीय जी रजामंद हो गए। उन्होंने एक अलग कुटिया बनाई थी, मैं वहां गया था। मालवीय जी से मेरा बहुत संपर्क था। उन्होंने जो कुटिया बनाई थी उसके 5-6 चक्कर थे।
सबसे भीतर वाली कुटी में मालवीय जी रहते थे।
उसी में नहाना धोना, खाना पीना, टट्टी पेशाब आदि सभी क्रियाएं होती थी।
धूप न लग जाए इसलिए भीतर रहिए, अकेले रहिए और उसके भीतर कोई नहीं जा सकता था। किसी चीज के लिए कोई जरूरत पड़ती थी तो वहां से खबर करते थे। बाहर से आदमी वह चीज दे जाया करता था, पर वे उस कुटिया में अकेले रहते थे।
मित्रों, आपको कायाकल्प करने के लिए सबसे पहले अच्छी तैयारी यह करनी चाहिए कि अपनी कुटिया में आप अकेले रहिए।
यह बात एक और जगह हिमालय पर गुफाओं में तो मैंने देखी थी, वहां भी आदमी अपनी अपनी कुटिया में, अपनी अपनी गुफाओं में अकेले रहते थे। यही बात मैंने सूरत में भी देखी। सूरत में एक मोटा बड़े महाराज हैं, उन्होंने भी ऐसी कुटियाएं बना रखी हैं।
आने वाले आदमी से पूछते हैं कितने दिन रहोगे? 1 महीने।
अच्छा, चलिए 1 महीने के लिए इसमें बंद हो जाए। बाहर से ताला ठोंक देते हैं। किवाड़ में एक जगह सुराख था, उसमें से खाना मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। टट्टी पेशाब के लिए उसी में फ्लैश लगा हुआ है, पानी का नल लगा हुआ है, उसी में आप रहिए, बाहर नहीं निकल सकते। जो कुछ कहना है आप किवाड़ के छेद में से कह दीजिए, चीज आपको मिल जाएगी।
चिट्ठी आएगी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन रहिए उसी में। एकला चलो रे। मित्रों, पहले ऐसी साधना कराई जाती थी।
मैं आपको ऐसी कठिन परिस्थितियों में तो नहीं फंसाना चाहता, पर मैं चाहता हूँ कि आपका मन उसी तरीके से कुटिया में कैद हो जाए।
आप अकेले रहें,
आप अकेलेपन में रहना सीखें और अपनी एक अलग दुनिया बसा लें।
अगर आप एक अलग दुनिया बसा लेंगे तो मजा आ जाएगा।
इस दुनिया में रहते हुए आप इतनी ताकत और इतना बल इकट्ठा कर पाएंगे कि मैं नहीं जानता कि उससे ज्यादा ताकत और इतना ज्यादा बल कोई और भी दे पाएगा क्या।
बेटे,
यह अकेलेपन की देन है। सूरज अकेला चलता है, चांद अकेला चलता है, पृथ्वी अकेली चलती है।
जितनी भी महत्वपूर्ण सत्ताएं हैं सभी अकेली चलती हैं। आप अकेला चलना तो सीखिए।
दूसरों पर डिपेंड रहना बंद कीजिए।
आप रवींद्रनाथ टैगोर का वह गीत गाया करिए, एकला चलो रे। एकला चलो,
अकेले चलो।
उन्होंने अकेले चलने के लिए कहा है। अकेले चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपना अकेला संसार अलग बसाना पड़ेगा। उसी में रहिए या अपनी कोठरी अलग बना लीजिए, अपना कमरा अलग बना लीजिए, अपना झोपड़ा अलग बना लीजिए,
उसमें किसी को मत आने दीजिए। तो फिर उसमें कौन कौन रहेगा?
उसमें देवताओं की स्थापना करके रखिए, देवता आपके साथ साथ रहें। इसका क्या मतलब है
बेटे?
इससे मेरा मतलब यह है कि कोई आदमी सामान्य आदमियों की तरह से ड्रामे के लिए जैसे काम करता है, तो आप भी उसी तरह से कीजिए। डॉक्टर आता है और मरीजों की दवा दारू करता है,
दवा दारू तो आप कीजिए।
दुकानदार आता है, डील करता है, तो आप भी डील कीजिए, पर अपना घर अलग रखिए। कैदियों का मकान अलग होता है। कैदी अपने घर की याद रखता है कि मेरी बीबी ऐसी होगी, बच्चे ऐसे होंगे। काम तो वह वहां जेलखाने में करता है। आप भी जेलखाने में काम कीजिए, अस्पताल में काम कीजिए, दुकान में काम कीजिए, पर रहिए अलग। जिस जमाने में आप रहते हैं, अगर आपने दूसरे लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू कर दिया और उनको अपना मानना शुरू कर दिया, तो वे आपको बड़ी गलत सलाह देंगे। ऐसी गलत सलाह देंगे कि मैं नहीं जानता कि इससे भी ज्यादा गलत सलाह देने वाला कोई और आदमी भी हो सकता है क्या। हमारा मन इतना घटिया है और हमारे कुसंस्कार इतने घटिया हैं, हमारी समझ इतनी वाहियात है कि जब भी सलाह देगी, ऐसी घटिया सलाह देगी जिससे हमारा नाश होता हो और जिससे हमारा पतन होता हो।
लौकिक दोस्त रोकेंगे।
हमारे दोस्त कौन हैं?
हमारे खानदान वाले, कुटुंब वाले, जिनको हम मित्र कहते हैं।
आपके वे मित्र सब बातों में ठीक हो सकते हैं, आपके ब्याह शादी में मदद कर सकते हैं, आपको खाना खिला सकते हैं, आपकी सब बात कर सकते हैं, लेकिन जहां तक ऊंचा उठने का सवाल है, वहां तक मेरा ऐसा अपना विश्वास है कि कोई भी आपके खानदान वाला, कोई भी आपका मित्र, कोई भी आपका दोस्त कभी भी भूलकर भी यह सलाह नहीं देगा कि आपको इधर चलना चाहिए। वह आपके लिए हमेशा यही कोशिश करेगा कि आपको त्याग के रास्ते पर से, वैराग्य के रास्ते पर से, समाज सेवा के रास्ते पर से रोके।
रोके बिना वे नहीं मानेंगे बेटे।
हमारी जिंदगी में भी रोकने वालों की तादाद बहुत बड़ी थी।
हमारे कुटुंबियों ने और हमारे मित्रों ने कितनी रुकावट डाली।
जिस दिन नमक सत्याग्रह होने वाला था, मैंने निश्चय किया था कि मैं कांग्रेस के वॉलंटियर के तरीके से काम करूंगा।
मेरे सारे के सारे संबंधी, घर वाले इतना ज्यादा खिलाफ थे कि वे किसी भी कीमत पर मुझे मरने मारने, मुझे हाथ से गंवाने को तैयार नहीं थे।
उन्होंने मेरी चप्पल छीन ली, जूते छीन लिए, कपड़े छीन लिए और यह कहा कि बस एक बनियान और धोती जो मैं पहने हुआ था पहनकर रहो। मुझे घर से बाहर नहीं जाने दिया और मेरे ऊपर चौकीदारी लगा दी, पहरेदारी लगा दी। रात हो गई तो मैंने कहा कि मुझे टट्टी आना है, मुझे इजाजत दीजिए। बस कान पर जनेऊ चढ़ाया और धोती एवं बनियान पहने एक हाथ में लोटा लेकर निकल पड़ा। न पैरों में जूता था, न सिर पर टोपी, एक हाथ में लोटा और एक हाथ कान के जनेऊ पर, बस चल दिया मैं।
6 अप्रैल को नमक सत्याग्रह शुरू होने वाला था। 5 अप्रैल की रात को मैं चल दिया।
आगरा शहर हमारे गांव से 12 मील दूर दक्षिण दिशा में है।
पहले मैं सामने उत्तर की ओर चला,
उत्तर से फिर पश्चिम में आया।
पश्चिम से चक्कर काटता हुआ तमाम रात भर मैंने कोई 40 मील का चक्कर काटा होगा, ताकि मेरे घर वाले मुझे पकड़ न लें। मित्रों,
टट्टी करने के बहाने घर से चल दिया और वहां कांग्रेस कैंप में जा पहुंचा।
क्यों साहब? मैं तो कांग्रेस का वॉलंटियर होने को आया हूं।
तो फिर आपके पास पहनने को तो कुछ भी नहीं है? जूता नहीं है, टोपी नहीं है, कुर्ता भी नहीं है।
हाँ साहब,
मेरे पास पहनने को कुछ भी नहीं है और मेरे पीछे पीछे शायद मेरे घर वाले भी आते हों।
वे मुझे रोकेंगे।
मुझे कहीं और भेज दीजिए। कांग्रेस वालों ने मुझे एक कुर्ता दिया, धोती दी, चप्पलें दी और मुझे कहीं दूसरी जगह भेज दिया और मैं वहां काम करने के लिए चला गया।
क्रमशः परम पूज्य गुरुदेव आध्यात्मिक पंचशीलों को अपनाने की चर्चा इस उद्बोधन में कर रहे हैं, जिसकी
2 कड़ियां आप पहले पढ़ चुके हैं। युग परिवर्तन की वेला में हम अपने आप से परिवर्तन आरंभ करें और इस क्रम में वे 5 बातें कह रहे हैं।
1. अपना एक संसार बिसाए और अलग रहिए, अलग अर्थात भौतिकता से हटकर। 2. अपनी इच्छाओं को मन कड़ा करके बदल डालिए। 3. कर्मयोगी की तरह से जिए।
4. जो चीजें पास हैं, उनका ठीक से इस्तेमाल करें, यथात समय, श्रम, इंद्रियां।
5. जो पास है उसे अकेले न खाएं, सारे समाज को बांटकर प्रयोग करें। यज्ञीय जीवन की वृत्ति विकसित करें। विगत नवंबर अंक में इनकी पूर्व भूमिका बनाई गई थी एवं बताया था कि किस तरह घर वालों का विरोध सहकर भी युवावस्था में ही वे कांग्रेस के शिविर हेतु घर छोड़कर चले गए एवं फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बने।
इस अंत में आगे के पंचशीलों का विवरण पढ़ें, वे आपको रोकेंगे।
मित्रों, मेरे घर वाले हमेशा मेरे मुखालिफ रहे।
अबा करके 10-5 बरस से ऐसा जरूर हुआ है जब वे कहते हैं कि हम सबकी अपेक्षा आचार्य जी समझदार निकले।
उनके मुंह से अब जाकर यह शब्द निकला है, अन्यथा उन्होंने हमें हमेशा गालियां सुनाई, बेवकूफ बताया,
कहीं मेरे काम की प्रशंसा नहीं की।
मित्रों,
आप इस जमाने में जिन लोगों के साथ रहते हैं वे आपके सिद्धांतों के मामले में, आदर्शों के मामले में कभी सहायता नहीं कर सकते और कभी कोई सलाह मशविरा नहीं दे सकते।
वे हमेशा आपको रोकेंगे।
आपको जो रोकने वाले हैं उनसे आप लड़ें, गालियां दें, ऐसा तो मैं नहीं कहता, उनसे झगड़ा टंटा करें, यह भी मैं नहीं कहता, क्योंकि उनकी अपनी परिस्थितियां हैं, उनका अपना मन है और उनके अपने संस्कार हैं। जिस घर में पैदा हुए हैं, जिस परंपरा में पले हैं, उस हिसाब से ही उन्हें सलाह देनी चाहिए, पर वे दया के पात्र हैं, क्षमा के पात्र हैं। मैं आपसे कहूंगा कि आप उनकी सेवा जरूर करें, पर उनसे प्रभावित न हों,
उनका दबाव स्वीकार न करें।
आप यह मानकर चले कि ये हमारे नहीं है, हमारे जिम्मे सौंपे जरूर गए हैं। हमारी बीबी हमारे जिम्मे सौंपी गई है, हमारे बच्चे हमारे जिम्मे सौंपे गए हैं, भाई हमारे जिम्मे सौंपे गए हैं और माता पिता हमारे जिम्मे सौंपे गए हैं।
इन सबकी हम सेवा सहायता करेंगे और पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन आपने इनका दबाव स्वीकार कर लिया
तो फिर समझ लीजिए कि सिद्धांतवाद के रास्ते पर आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे।
इस मामले में गोस्वामी तुलसीदास जी का और मीराबाई का दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है।
मीराबाई ने गोस्वामी तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा कि हमारे खानदान वाले और हमारे घर वाले इतनी ज्यादा रुकावटें लगाते हैं कि कभी प्यार से कहते हैं तो कभी नाराजगी से कहते हैं, कभी धमकाते हैं, कभी रूठ जाते हैं और हमको सिद्धांत के रास्ते पर नहीं चलने देना चाहते। अब आप ही बताए कि क्या करना चाहिए।
गोसाई जी का मीराबाई को उत्तर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसके उत्तर में मीराबाई के लिए एक कविता लिखी थी,
वह अब बहुत प्रख्यात हो गई है। उस कविता को मैं बहुत पसंद करता हूँ, कभी मन आता है तो गाया करता हूँ, कभी गुनगुनाया करता हूँ। उस कविता में उन्होंने कहा है,
जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताही कोटी बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, तज्यो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, बलि गुरु ज्यो, कंत ब्रज बनितनही, भये मुद मंगलकारी, जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताही कोटी बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही।
मित्रों, इतना साहस अगर आपके पास हो तो आप यह ख्याल कर सकते हैं कि हम सिद्धांतों की राह पर लंबी मंजिल पूरी कर सकते हैं, अन्यथा उमंग आएगी, जोश आएगा, एक महीने नेतागिरी करेंगे, दूसरे महीने में वानप्रस्थ हो जाएंगे,
तीसरे महीने में सारा जोश ठंडा हो जाएगा, बाप गाली देगा, बीबी मायके चली जाएगी,
फिर आप कहेंगे कि हमें तो बड़ा घाटा हुआ, बड़ा झगड़ा पड़ा,
गुरुजी ने हमको कोई सहायता भी नहीं दी, गुरुजी ने हमारी स्त्री को भी नहीं समझाया और हमारे बाप को भी नहीं समझाया। बेटे, न तो मैं तेरे बाप को समझा सकता हूँ और न तेरी औरत को समझा सकता हूँ, वे जहाँ के तहाँ रहेंगे।
तेरे अपने पांव मजबूत हों तो तू अपने रास्ते पर चल, अपनी एक अलग दुनिया बसा ले और अपनी दुनिया में ऐसे सलाहकार मुकर्रर कर ले जो हमेशा नेक सलाह देने के लिए तैयार हों। क्यों साहब, कोई और सलाहकार बना ले तो?
हाँ बेटे,
बना ले, परंतु ये बड़े निकम में हैं और ये तेरे सलाहकार नहीं हो सकते। ऊंचा उठने के लिए कोई दूसरे सलाहकार काम दे सकते हैं,
अपने सलाहकार स्वयं बनाएं।
वे कौन से सलाहकार हैं?
बेटे,
हमने ऐसे ही सलाहकार मुकर्रर कर रखे हैं और अकेले ही कमरे में रहते हैं, तो आप अकेले ही रहते हैं।
बेटे,
हम अकेले नहीं रहते, हमारे साथ में बहुत से आदमी रहते हैं। कौन कौन रहते हैं?
चलिए मैं आपको उनके नाम गिनाता हूँ।
सातों ऋषियों को मैंने अपना सेक्रेटरी बना रखा है, सात ऋषि हमारे कमरे में बैठे रहते हैं।
महाराज जी,
वे कहाँ बैठे रहते हैं? वहाँ तो कलम दवात रखी रहती है।
हाँ बेटे,
कलम दवात तो रखी रहती है, पर वे मेरे दिमाग में बैठे रहते हैं। जब कभी भी मुझे सलाह लेनी होती है तो मैं अपने खानदान वालों को चिट्ठी डालकर सलाह नहीं मांगता और वकील साहब से भी नहीं पूछता।
फिर मैं किससे पूछता हूँ?
फिर मैं उन लोगों से पूछता हूँ जिन्होंने मेरे दिमाग में, दिल में और मेरे कमरे में अर्दा जमा रखा है।
बेटे,
वह मिट्टी की दुनिया नहीं है, असल में वह ख्वाबों की दुनिया है। ख्वाबों की दुनिया में वे मेरे पास एकांत में बैठे रहते हैं, मेरे पास रामकृष्ण परमहंस बैठे रहते हैं। जब कभी मन आता है तो समर्थ गुरु रामदास आ जाते हैं,
जगत गुरु शंकराचार्य आ जाते हैं,
भगवान बुद्ध आकर बगल में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि कहिए साहब, क्या मामला है? अरे साहब, सब पागल आ गए हैं,
अब देखिए मस्ती के जमाने हैं,
क्यों साहब, आपके जमाने में क्या हुआ था घर वालों के बारे में?
बुद्ध भगवान बताना।
हमारी दीवानों की मंडली।
अरे साहब, हम क्या बताएं, बीबी चलने नहीं देती थी, बच्चा चलने नहीं देता था।
एक दिन हमने देखा कि वे सब सो रहे हैं, सो चुपचाप रात के 12 बजे चल दिए।
अच्छा, समर्थ गुरु रामदास,
आपने भी यही किया था?
अपना किस्सा सुनाए। हमारी ब्याह शादी हो रही थी। पंडित जी ने कहा, लड़के लड़की सावधान।
हमने समझा कि दाल में कुछ काला है,
अतः हम मुकुट छोड़कर भाग लिए।
अच्छा, तो यह मामला है।
अच्छा साहब, शंकराचार्य जी,
आपका क्या मामला है?
अरे साहब, हमारी मम्मी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी।
कहती थी कि बेटे का ब्याह करूंगी, बेटे के पोता पैदा करूंगी, पोते के पोता पैदा करूंगी, यही प्राण खाए जा रही थी मम्मी। मम्मी की अकल को कैसे ठिकाने लगाया जाए।
शंकराचार्य जी ने कहा कि हम तो पानी में जा बैठे और कहा, अरे मगर खा गया, मगर खा गया।
तो मम्मी रोने लगी। हमने कहा, देख बाबा,
अगर तू मुझे शंकर जी को दान कर दे तो मैं बच जाऊंगा, नहीं तो बचूंगा नहीं,
मगर खा जाएगा मुझे। अच्छा बाबा, शंकर जी को दे दूंगी। बस छलांग मारकर बाहर आ गया।
अच्छा साहब, मिलाइए हाथ।
यह दीवानों की मंडली है, घटिया लोगों से बचें।
मित्रों,
हमारा यह दीवानखाना है जो हमेशा चलता रहता है। हम दीवानों की मंडली से बात करते रहते हैं, दोस्त आते रहते हैं।
साहब चाय पिलाए, आप तो कॉफी पी लीजिए। बुद्ध भगवान आइए,
आप भी एक कप कॉफी पीजिए। काहे की कॉफी है
बेटे,
ऐसे ही ख्वाबों की कॉफी है।
हनुमान जी को आप अपना सलाहकार मुकर्रर कर लें।
फिर ये घटिया आदमी, निकम्मे आदमी, जो वासना की दृष्टि से बहकाते रहते हैं, सब्जबाग दिखाते रहते हैं। क्यों साहब?
हनुमान जी,
सच बताए कि क्या मामला है? आप तो बहुत होशियार आदमी हैं।
अरे साहब,
देखिए, हमने अपनी जवानी काट डाली, हमने शादी ब्याह भी नहीं किया। शादी ब्याह करके क्या करना?
अगर हम शादी ब्याह करते तो बीबी क्या रामचंद्र जी की सेवा करने देती?
फिर वह कहती कि रामचंद्र जी से तनख्वाह लाए, बोनस लाए, प्रोविडेंट फंड लाए, नंबर 2 की कमाई लाए।
और फिर रामचंद्र जी कहते, चल बे मक्कार कहीं का, फिर हनुमान जी हो पाते।
नहीं, फिर हनुमान हनुमान नहीं हो पाते।
अच्छा साहब, भीष्म पितामह जी,
जरा आप बताए यह क्या चक्कर है?
सारे खानदान वाले अटके हुए हैं कि आपको तो ब्याह करना चाहिए।
इन खानदान वालों की बात माने की नहीं माने?
भीष्म पितामह जी,
आप समझदार आदमी मालूम पड़ते हैं,
आप ही गवाही दीजिए। अरे आचार्य जी,
आप किस झगड़े में पड़ते हैं? देखिए, हमने तो ब्याह नहीं किया और देखिए, हम तो शरशय्या के ऊपर सोते रहे और 6 महीने तक अपनी मर्जी से मौत को चैलेंज किया था ब्रह्मचारी होने की वजह से।
ठीक है, आइए हाथ मिलाइए।
भीष्म पितामह, हनुमान जी जैसे श्रेष्ठ आदमियों की मंडली बैठी हुई है, उसी की सलाह हम लेते हैं और परामर्श लेते हैं, और ये जो घटिया आदमी है उनसे दूर रहते हैं।
कायाकल्प की फैक्ट्री। मित्रों, श्रेष्ठ आदमी, श्रेष्ठ सलाहकार एक तरह की भट्टी हैं।
फैक्ट्री की भट्टी में शीशा पिघल जाता है, लोहा पिघल जाता है, पिघल जाने के बाद में उसे नए रूप में ढाल दिया जाता है, नए रूप में ढलने के बाद में हमारे पास आ जाता है और फैक्ट्री वाले को अपना पैसा मिल जाता है।
पुराने टायर घिस जाते हैं,
हम उसे फैक्ट्री में ले जाते हैं, फिर वह उसे ढाल देता है और हम नया टायर ले आते हैं। बराबर ऐसे ही करते रहते हैं।
आप अपनी मनस्थिति को, जो घिस गई है, एक बार फैक्ट्री वाले के पास ले जाइए, गला दीजिए और गला करके फिर नया टायर ढाल दीजिए।
तो क्या हो जाएगा?
कायाकल्प हो जाएगा।
आपका क्या मतलब है
बेटे?
इसका मतलब यह है कि अभी तक हमारी प्रेरणा का केंद्र बहुत ही छोटा और घटिया रहा है।
अब आप इसको बदल दीजिए, अपनी मनस्थिति को बदल दीजिए, अपनी इच्छाओं को बदल दीजिए। आदमी की चाबी।
मित्रों, मैंने एक दिन आपको बताया था कि हमारी इच्छाओं में ताकत है, आदमी की ताकत कुछ और नहीं, उसकी इच्छा है।
कहा भी गया है, श्रद्धामयम पुरुषो यो यच्छ्रद्धा सैव सः, गीता -17:3।
आदमी के जो नतीजे हैं, आदमी की जो निष्ठाएं हैं, आदमी का जो विश्वास है, आदमी की जो इच्छाएं हैं, बस वह वही है, इसके अतिरिक्त आदमी और कुछ नहीं है। सारी की सारी मशीनें इसी सिद्धांत पर काम करती हैं। चाबी वाले खिलौने में हम चाबी भर देते हैं और वह कभी उछलता है, कभी नाचता है, कभी रेल के पहिए पर चलता है, दुनिया भर के सब काम करता है, उसकी चाबी सब काम कराती रहती है।
आदमी की चाबी उसकी इच्छाएं, उसकी विचारणाएं, उसकी भावनाएं, उसकी निष्ठाएं, उसके संकल्प हैं।
अक्ल उसी का नाम है, क्रिया भी इसी का नाम है। अक्ल का कुछ भी दोष नहीं है और न ही क्रिया का दोष है, वे तो मिट्टी के हैं। असल में जो हमारी इच्छाएं हैं, अब तक वे तीन चीजों पर निर्भर रही हैं।
मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इन तीनों चीजों को घटिया मानिए, छोटी मानिए, निकृष्ट मानिए, गिराने वाली मानिए।
इनके स्थान पर दूसरी इच्छाओं की स्थापना कर लीजिए।
तीन इच्छाएं। मित्रों, हर एक आदमी की इच्छा यह है कि हमारे शरीर को वासनाओं की पूर्ति करने का मौका मिले।
सजावट भी इसी में आती है, काम वासना भी इसी में आती है, जीभ का चटोरापन भी इसी में आता है, हरामखोरी एवं आलस्य भी इसी में आते हैं।
हमारे शरीर को आराम मिलना चाहिए।
इसका नाम क्या है?
वासना। दूसरी इच्छा है तृष्णा की पूर्ति। तृष्णा का अर्थ यह है कि आदमी के पास ज्यादा से ज्यादा चीजें जमा हो, पैसा ज्यादा हो, रुपया ज्यादा हो, मकान ज्यादा हो।
ये दो चीजें हो गई।
तीसरी चीज है अहंकार। वासना एक, तृष्णा दो और अहंकार तीन।
अहंकार घमंड अर्थात हम बड़े आदमी हो जाएं, हम सेठ हो जाएं, हम सिनेमा में बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, हम तो बालकनी में बैठेंगे, गैलरी में बैठेंगे।
अरे बेटे, यहाँ बैठ जाएगा तो क्या हर्ज है, यहाँ भी दिखाई पड़ेगा।
अरे साहब,
यहाँ 2.25 रुपये का टिकट है और वहाँ 12 रुपये का टिकट है। बेटे,
वहाँ 12 रुपये में क्या बात है और यहाँ 2.25 रुपये में क्या बात है।
अरे साहब,
वहाँ सब आदमी देखेंगे तो कहेंगे कि कोई साहब बैठा हुआ है, कोई बड़ा आदमी बैठा हुआ है और यहाँ बैठ जाएगा तो।
यहाँ बैठ जाऊंगा तो समझेंगे कि कोई मास्टर बैठा हुआ है, लेकिन सिनेमा तो तुझे दिख जाएगा ना।
हाँ साहब, दिख तो जाएगा, पर मैं 2.25 रुपये में नहीं बैठूंगा,
12 रुपये में ही बैठूंगा। मित्रों,
यह क्या मामला है? आह है, जिसके मारे तना जा रहा है, ऐंठा जा रहा है, मरा जा रहा है, सड़ा ही जा रहा है, घुला ही जा रहा है।
काहे के मारे?
आह के मारे, आह के मारे सारा पैसा इसी लग्जरी में, लिविंग स्टैंडर्ड में फूंकता जा रहा है।
अरे अभागे,
तू जानता है कि लिविंग स्टैंडर्ड किसको कहते हैं? जीवन यापन करने की पद्धति को लिविंग स्टैंडर्ड कहते हैं।
नहीं साहब,
लिविंग स्टैंडर्ड बड़े आदमी का स्टैंडर्ड है।
बड़ा आदमी बनने चला है मिट्टी का धूत।
स्टैंडर्ड की चिंता है, लेकिन कल परसों की चिंता नहीं है। जब कल परसों वहां धूल में पड़ा हुआ दिखाई देगा और तुझे हवा लात मार के उड़ा करके बाहर फेंक देगी। बड़ा आया नवाब, अह को परिष्कृत कर दें।
मित्रों,
इन्हीं तीन विडंबनाओं में, तीन मूर्खताओं में, तीन बेअकलियों, तीन बेवकूफियों में सारी की सारी हमारी जीवन की सत्ता का सत्यानाश हो गया और हम चौपट हो गए।
बेटे,
अब क्या करना पड़ेगा?
अब हमें इसको बदल देना चाहिए,
अपना अह सुपर ईगो में परिष्कृत कर देना चाहिए। हमारा जो अह है, हमारी जो इज्जत है, वह नहीं होनी चाहिए जो पैसे पर डिपेंड करती है। हमारी इज्जत हमारे गुणों के ऊपर, हमारे कर्म के ऊपर, हमारे स्वभाव के ऊपर, हमारे चरित्र के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए। हम दूसरों की तुलना में श्रेष्ठ हों। दूसरे आदमी पैसे के पीछे ईमान बेचते हैं, हम नहीं बेचते।
अरे साहब, आप तो गरीब आदमी हैं।
हाँ, हम गरीब हैं, लेकिन तुझ जैसे घटिया नहीं है जो 2 पैसे में ईमान बेचता फिरता है। हम अपनी जगह पर टिके हुए हैं। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, तुझसे लाख गुने अच्छे हैं। अपनी कीमत बढ़ाएं।
मित्रों,
हमारी यह इज्जत जो मन के भीतर शालीनता से आए, इसको मैं क्या कहता हूँ?
इसको मैं आत्मपरिष्कार कहता हूँ, आत्मसम्मान कहता हूँ। मैं अहंकार के खिलाफ हूँ, लेकिन आत्मसम्मान के लिए हरेक से कहता हूँ कि आपका आत्मसम्मान बना रहना चाहिए।
आपके उद्देश्य, आपके जीवन का लक्ष्य, आपकी आकांक्षा इस संबंध में जितनी ज्यादा बढ़ सके, आप इस संबंध में दूसरों की तुलना में जितने ज्यादा महत्वाकांक्षी हो सकते हो, उतने ही श्रेष्ठ हैं। ईमान की दृष्टि से, आदर्शों की दृष्टि से, लोकसेवा की दृष्टि से, चरित्र की दृष्टि से, गुणों की दृष्टि से, कर्म और स्वभाव की दृष्टि से दूसरों की तुलना में आप जितने अधिक आगे बढ़ सकते हैं, उतने ही आप श्रेष्ठ हैं।
इस श्रेष्ठता को बढ़ाने के लिए आप आत्मपरिष्कार की महत्वाकांक्षा को बढ़ाइए और अधिक बढ़ाइए।
अपने कामों में सुपरियोरिटी पैदा करने के लिए आप अपनी महत्वाकांक्षा बढ़ाइए। जो भी आपका काम हो, जो आपके लिए ऐसी गवाही दे कि जिस आदमी ने यह काम किया है बड़ी दयानतदारी से, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी जिम्मेदारी से और बड़ी जाफदानी से काम किया है। आपका काम जरा सा हो, झाऊं लगाने वाला काम हो, कोई भी काम हो, जो भी काम आप करते हो, ऐसे बढ़िया तरीके से कीजिए जिससे खुशी पैदा हो।
आपका काम भगवान की पूजा जैसा हो।
देखने वाला चिल्ला चिल्ला कर यह कहे कि यह काम किसी ऐसे आदमी ने किया है या स्वयं आपका कार्य ही यह कहे कि किसी ऐसे आदमी ने मुझे किया है कि उसने अपनी सारी की सारी अक्ल, सारी की सारी समझदारी मुझमें झोंक दी है। नामाकुल ना बने। लोग काम करते तो हैं, पर नींद में पड़े हुए आदमी के तरीके से, आलसी के तरीके से, प्रमादी के तरीके से, गैर जिम्मेदार आदमी के तरीके से, लेकिन यह भी कोई काम करने का तरीका हुआ। हर काम यह गवाही देता है कि किसी निकम्मे आदमी ने मुझे किया है। हर किताब यही गवाही देती है कि किसी वाहियात आदमी की मैं नौकरानी हूँ। हर कपड़ा यह गवाही